वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम के आरहमाण स्कंद का 19वां अध्याय का नाम है बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना और 13 श्लोक हम पढ़ेंगे 22, 23 और 24। 22 और 23 में तात्पर्य नहीं लिखा गया है, इसलिए मैं पहले 22 और 23 श्लोक को पढ़ता हूँ, इसके बाद 24 श्लोक की आवृत्ति हम लोग करेंगे। कर्म असंकुशो द्वीपे नाम पूर्यत पूर्यते नौ वर्ष समेतेन सप्त द्वीप वृक्षया। यदि मैं तीन पर भूमि से संतुष्ट न हूँ तब तो यह निश्चित है कि नौ वर्षों से युक्त सातों द्वीपों से भी द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। सप्त द्वीपाधिपतयो नृपाण्य अर्थय कामैर गता नामकम कृष्णाया इतना सतम। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज प्रथो तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने सातों द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। हमारे साथ दुराइए कैसे यदृक्षोपन्न संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्टोकोक अजीतात्मोपसादित यदृक्षोपन्न संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्टोक न संतुष्टोक अजीतात्मोपसादित यदृक्षोपन्न संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्टोक अजीतात्मोपसादित।
I'm sorry.
इच्छया अपने कर्म के अनुसार परम सत्य द्वारा जो कुछ प्रदत्त है उत्पन्न जो कुछ मिला है उससे संतुष्ट मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। वर्तते है सुखम सुख न नहीं असंतुष्ट असंतुष्ट के लिए त्रिभी लोक ही तीनों लोकों को पाल लेने पर अजित आत्मा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता उपसारित ही भले ही प्राप्त क्यों न कर ले। अनुवाद और तत्पुरुष प्रभुआ जी का वर्ग शील अनुवाद की मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। तात्पर्य यदि सुखी जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया है सुखम अंगियतम दैत्या देह योगी नदीहीना सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुखम अयत्नतः। हे दैत्य मित्रों देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार की हमें दुख प्राप्त होता है। भागवतम 7:6 सुख प्राप्ति के संबंध में यह विचारधारा बिल्कुल सही है। भगवद्गीता 6:21 में असली सुख का वर्णन इस प्रकार हुआ है सुखम आत्यंतिकम यत्र बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर फिर वह सत्य से कभी दूर नहीं जाता। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। परा इंद्रियां भौतिक तत्व से बनी इंद्रियां नहीं होती। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है अहम ब्रह्मास्मि और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देवी है। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित हैं और अज्ञान के कारण आच्छादित करने वाली इन इंद्रियों को हम अपनी वास्तविक इंद्रियां मान लेते हैं किंतु अपनी वास्तविक इंद्रियां तो भौतिक आवरण के भीतर हैं। देहनो इसमें यथा देह भौतिक तत्व के आवरण के भीतर आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परवते निर्मलम आध्यात्मिक इंद्रियों के आच्छादित होते ही हम इन इंद्रियों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं तब इन इंद्रियों की पूर्ण संतुष्टि होती है। इंद्रिय तृप्ति के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिलेगा मिल सकेगा। इंद्रिय तुष्टि की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा ले और अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए इच्छित फल भी प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे भ्रम बस सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी हैं, जबकि तथ्य यह है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के वास्तविक कार्य में लगे रहते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले और वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, तो उसे कभी भी नित्य आनंदमय सुख नहीं मिल सकेगा। अतः श्रीमद्भागवतम 5.5.1 में संस्तुति की गई है, तपो दिव्यम पित्रकायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म शौचम तमन्तम्। मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए जिससे उसकी अस्तित्व पर स्थिति पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। यह श्लोक है कि स्वयं वामन देव भगवान कहते हैं, संग इस प्रकार है कि बलि महाराज के यज्ञ भूमि में वामन देव आए और वामन देव के सौंदर्य को उनके प्रभाव को देखकर बलि महाराज बहुत प्रभावित हुए, बढ़िया से सुष्ट रूप में स्वागत किया और स्वागत करने के बाद बलि महाराज भगवान से कहे कि हे विप्रदेव ब्राह्मण कुमार, आप कृपा करके मुझसे कुछ मांगिए, मुझे लोग देने की इच्छा हो रही है, दान करने की इच्छा हो रही है। भगवान ऐसे बिगनिंग में मांगने तो गए ही थे, लेकिन ऐसा मूड बना रहे थे नहीं मैं यज्ञ देखने के लिए आ गया, ऐसे यज्ञ में श्रवण कीर्तन के लिए आया हूँ, लेकिन बलि महाराज आग्रह ही कर रहे थे। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा की पूर्ति की आप देना चाहते हैं, इसलिए ऐसे मुझे भी आवश्यकता नहीं है, तो हमें मुझको 3 पग भूमि का दान कीजिए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देव जब कहे तो ब्राह्मण देव यह बात कहे बलि महाराज को, तो बलि महाराज भगवान की इस याचना को अप्रिशिएट नहीं किए, बल्कि बलि महाराज को झुंझला से गए। तो कहते हैं, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ति दुर्भिसम्मत तम बालो बालिस्मते स्वार्थम प्रत्येक भोया था। बलि महाराज कहते हैं ब्राह्मण के, तो भगवान नहीं कहते थे, नहीं जानते थे भगवान है, हे विप्र कुमार, अहो ब्राह्मण दायाद के ब्राह्मण के पुत्र विप्र कुमार, जब आए थे आप बोल रहे थे, वाणी जो बोल रहे थे हमसे प्रवचन कर रखी है, हमसे बोले और आपका जो तेज शारीरिक सौंदर्य है उसे मैं अभिभूत हो चुका था और मुझे लगा था कि आप बहुत बड़ी विद्वान हैं, लेकिन जब याचना कर रहे थे 3 पग भूमि की, तो मैं समझ गया तुम बाल आप बच्चे हैं, इतना से तो कोई आपत्ति नहीं कि आप बच्चे हैं, आज सड़क में बालिश मिली आपकी बुद्धि भी बचानी है, शायद भी सुन डालती है। बामन देव कह रहे हमसे क्या भूल गई, तो स्वार्थम प्रत्येक भोयथा, आप नहीं जानते हो कि आपका वास्तविक हित स्वार्थ किस बात में है। आप ये नहीं समझते हो, वास्तविक सिचुएशन को समझने की आपकी क्षमता नहीं, आपका भी हित किसमें है, आपका स्वार्थ किसमें है, आपकी भलाई किसमें, आप उसको आपको पता नहीं। से क्या ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, बोले महाराज कहते माम अपने कर्जनी सामने कहते माम माम बचो भी समाराध्य लोका नाम ईश्वरम पद त्रयमान दीपद दीपद आशुषम। आपको यह पता नहीं कि आप किसके सामने खड़े हैं, माम मैं मेरा क्या परिचय है। आज पृथ्वी खंडों में नहीं बटी हुई है कि यह खंड है उसका राजा वह है उसका राजा है, संपूर्ण पृथ्वी का मैं एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हूँ। केवल पृथ्वी ही है, स्वर्ग पर भी मेरा अधिकार है, लोका नाम एकम ईश्वर में अकेला ईश्वर हूँ, अकेला राजा हूँ, अकेला कंट्रोलर हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ। पद त्रयम गणित है और हमसे तीन पैर भूमि की याचना आप कर रहे हैं, यह मेरे लिए भारी इंसल्ट है, आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, हमको तिरस्कृत कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी के साथ जाकर तीन सीधे प्रति दुष्टदान की याचना करना, अरे तो आपको कोई दे सकता है, तो आप बुद्धिमान नहीं लगते हैं। फिर बलि महाराज ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देव जी, नाम उपवर्ग जो एक बार मुझसे मांग लेता है तो उसी दिल से उसको मांगने का कार्य समाप्त होना चाहिए, वो देने वाला दानी बन जाना चाहिए। वही नहीं, उसके पुत्र पुत्र के पौत्र के खानदान में कोई भी व्यक्ति को मांगने का अधिकार नहीं रहता जो मुझसे एक बार मांग लिया, हमसे मांग लिया मतलब दाता होना चाहिए। इसलिए यदि आप भूमि की याचना कर रहे हैं, आपको जगह ही चाहिए, तो आप इतनी भूमि ले लीजिए कि आपके जो खानदान आने वाले पीढ़ी किसी को मांगना न पड़े, देने वाले हो जाए। बलि महाराज कहे कि कुछ सब्सटेंशियल हमसे मांगिए, मैं एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हूँ, राजा हूँ, स्वर्ग भी मेरे अधीन है, स्वर्ग का भी मैं राजा हूँ, इस इंद्र पद पर मैं प्रतिष्ठित हूँ और मुझमें देने की इच्छा है, मेरे हाथों में खुलाहट हो रही है, आप कुछ मैं दूँ, कुछ सब्सटेंशियल बढ़िया परिणाम देना चाहता हूँ। ब्राह्मण देव कहे कि बलि महाराज हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आपको शरण करने का, सिर्फ दाता की देने वाले की चैरिटी, देने वाले की कुछ नैतिकता होती है तो मांगने वाले की भी कुछ नैतिकता होती है, हमारे भी कुछ नैतिक नियमों से बंधा हुआ, हमको ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। और इस पर भगवान संतोष की महिमा का वर्णन करने लगे। इन श्लोकों में संतोष, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, सिचुएशन की बात कह रहे हैं, संतोष की महिमा का वर्णन भगवान कह रहे हैं। श्लोकों तो वर्णन किया जा सकता किया गया है, पहले इसे पूर्व श्लोकों में कह गया है कि ब्राह्मण बलि महाराज यदि आप समझते हैं कि मैं तीन पर भूमि से संतुष्ट नहीं हूंगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी पाकर, पूरा सप्त दीप वती नहीं, पूरा पृथ्वी पाकर भी मेरा संतोष नहीं हुआ। तो संतोष की महिमा इसमें कहते हैं बल ब्राह्मण देव जी, सप्त दीप आ रही। उन्होंने कहा, भगवान कहे कि हमने इतिहास सुना है, बड़े बड़े राजा हुए, पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे, पृथ्वी महाराज थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, गय नाम के एक राजा हुए, बहुत बड़े सम्राट थे, वो संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र अकेले सम्राट थे, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं थे, उनकी महत्वाकांक्षा धन, अधिक धन प्राप्त करने के इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, पूरी नहीं हुई थी, तो असंतुष्ट व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति है, तो उसे कुछ भी दे दीजिए संतुष्टि नहीं होगा। तो अब संतोष की बात, डायरेक्ट संतोष के विषय में ब्राह्मण देव कहते हैं, वृक्षोपपन्न, हम थोड़ा इस श्लोक के तात्पर्य में चलते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर संतोष की बातें कहते हैं, तो संतोष के लिए प्रभुपाद जी प्रारंभ तात्पर्य में कहते हैं कि एक जानते हैं आप लोग, एक दार्शनिक सिद्धांत है, कुछ लोगों की मान्यता है, हमारे मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो सुख की प्राप्ति करना है। एक दार्शनिक रूप है जो हम मेंटेन करते हैं, मान्यता है उनको, आइडियोलॉजी है कि सुख प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, और सुख से उनका मतलब है भौतिक सुख, भौतिक सुख की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। इसे हिडोनिस्ट कहा जाता है, हिडोनिस्ट जो सुखवाद, और उसके प्रवर्तक उस सुखवाद थ्योरी के फ्लैशलाइज करने, फ्लैश को रूप देने वाले बहुत बड़े साधु हैं, महात्मा हैं, दार्शनिक, उनका नाम है चर्वाक, और उन्होंने सुख के बड़ा बढ़िया एक सिद्धांत मैनिफेस्टो दिए, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीना है, जीवन है, इंद्रिय शक्ति है, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हर प्रयास करके सुख से जीना चाहिए, जावत जीवे सुखम जीवे। वैदिक काल में ऐसा समझा जाता है कि सुख से जीने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर है तभी हम सुखों को भोग कर सकते हैं, शरीर अस्वस्थ है तो कितना हम भोग की सामग्री है उसका हम आस्वादन नहीं कर सकते, तो सुख प्राप्त करने के लिए बढ़िया स्वस्थ शरीर चाहिए। और एक वैदिक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि स्वस्थ शरीर रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घी खाना, घी बहुत उपयोगी है आयुर्वेद के अनुसार, शरीर की भौतिक शरीर को ठीक, तो भोग तो बहुत महंगा होता है, प्राप्त नहीं होता, सबको प्राप्त नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपको घी खाना चाहिए, और घी के लिए वो पीने की बात करते हैं, सब बॉयल करके गर्म पीने पर ज्यादा फायदा करता है, जमा हुआ घी अच्छा नहीं है, खाने की पीने की बात घृतम घी पीना चाहिए, और घी नहीं लेता है तो रिंगण कृत आते घृतम पीने, रिंगण लेकर लक्ष्य है सुख प्राप्त करते हैं, तो रिंगण लेकर घी पीना है, घी ऐसे नहीं लेता है तो ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए, कह सकता है कि ऋण तो बड़ा खराब है, चुकाना पड़ता है, इस टाइम में तो भरना पड़ता है, अरे कौन देखा है, ऋणम कृत्वा घृतम पीने, भस्म घृत देहस्य पुनरागमन, एक बार शरीर भस्म हुआ बस खत्म हो गया जीवन। ठाकुर का एक तात्पर्य यह चाह से उपनी लाइन है कि यदि सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी में मनुष्य को संतुष्ट रहना है। यदि इस बात को खंडन वैदिक सिद्धांत नहीं है, वेदों में खंडित किया गया है, सुख ही जीवन का भौतिक सुख जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन मान लीजिए भौतिक सुख भी यदि आपके जीवन का लक्ष्य है तो भी भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तब भी संतोष के बिना आप सुखी नहीं रह सकते हैं। संतोष कंटेंटमेंट संतोष नहीं है तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। चाह गई चिंता गई मनवा भी परवा है, जाही कछु न चाहिए सोसा हम पतिसा। सबसे राजा वह है धनवान है सुखी जिसे कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े साधु होते हैं, फकीर होते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, पर कपड़ा भी नहीं है, लेकिन आनंद में मग्न रहते हैं। त्यक्त्वा पूर्ण शेष मंडल पति सर्वसामियों के विषय में एकदम सब कुछ छोड़कर कौपीन कंठा से, तो केवल कौपीन पहने थे, पेड़ के नीचे बिंदा बैठे परम आनंद समुद्र मग्न, तो वहां श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपका सुख भी भौतिक सुख भी प्राप्त करना है तो उसके लिए संतोष की आवश्यकता है। असंतुष्ट व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता है। और एक बहुत बड़ी वैदिक मान्यता है, सिद्धांत है, इसमें प्रहलाद महाराज की एक उक्ति है, सुखम आयुंगेकम दैत्या देह योगे न देहिना सर्वत्र लभते दैव यथा सुखम यत्नतः। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो इंद्रिय सुख है, जो भौतिक सुख है, जो रियल प्लेजर है, तो जिसको देह मिला है, हमको शरीर मिला है, तो हमारे प्रारब्ध में जो है उसको हमको अवश्य मिलेगा। पूर्वकृत हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, हमारे ललाट में यदि सुख है तो चाहे कहीं भी जाएंगे सर्वत्र लभते। यदि हमारे भाग्य में, हमारे ललाट में, हमारे कर्म में सुख लिखा होगा तो आप उसके लिए प्रयास करें अथवा न करें अपने आप आएगा। कोई किसी भी सर्वत्र सब किसी भी पृथ्वी पर कहीं भी जाएंगे आपका प्रारब्ध का जो सुख और दुख आपके साथ जाएगा। यहाँ पे जो दूसरे शरीर में चले गए तब भी वो आपके साथ जाएगा। सर्वत्र लभते दैवा आपके यथा दुखम अयत्नता। जैसे हम दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं हमको दुख प्राप्त हो जाता है, वैसे ही हम सुख के लिए यदि कोई प्रयास नहीं भी करेंगे, यदि हमारे दौड़ के द्वारा भगवान की इच्छा होगी, भगवान हमारे देना चाहते होंगे तो हमको सुख दे देंगे। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तब प्रयासो न कर्तव्य। इसीलिए सुख प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि यह आयु बहुत प्रयास जो अपने आप मिलने वाला है उसके लिए प्रयास करने उसे समय वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ एनर्जी जाता है। तो उसे प्रयास नहीं करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने जो यह बात वैदिक ग्रंथों में बार बार कही गई है, जब ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए घर से निकले थे, बहुत सा उपदेश नारद जी ने दिया है, उसमें से एक उपदेश यही है कि बेटा मान अपमान से विचलित नहीं होना चाहिए। तुमको जो अपमान मिला, तिरस्कार मिला, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको राज्य नहीं मिलेगा, तो परिपुरुषावन मात्र पुरुष है, पुरुष को भगवान दय उसके द्वारा भगवान की व्यवस्था का सुपर सुप्रीम जो दिन है प्रोविडेंस है उसके द्वारा जो हमारे लिए प्रकट किया गया है उसे में संतुष्ट रहना चाहिए। दयोपादितम जाओ परिवीक्ष ईश्वर ईश्वर गति विधा। विद्वान व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमको जो सुख और दुख जो स्थिति प्राप्त हुई है वो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर की गति समझ कर मैं इसी के डिजर्व करता हूँ। ईश्वर गति विधा, ईश्वर की गति भगवान की इच्छा कृष्ण की इच्छा समझ कर उसको संतुष्ट रहना चाहिए। और यस्य दैव विदितम, जिसके भाग्य में दैव ने जो कुछ लिख दिया है, भाग्य में जो हमारे लिख दिया गया है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यदि हम संतुष्ट रहेंगे आत्मान पोषयेंगे तमसः पारमिच्छति। वह व्यक्ति इस अज्ञान को जो जीवन मरण का चक्र है, जन्म मृत्यु का जो रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का जो चक्र है उसे पार लग जाए। तो उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे, सुख के लिए प्रयास नहीं कर रहे। वैदिक सिद्धांत है कि भौतिक स्तर पर मटेरियल किसी भी उपाय से हम लोग अपने सुख को अथवा दुख को बदल नहीं सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मा जी ने कहा है यशेन्द्र गोप मथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातमति कर्माणि निर्धति किंतु भक्ति भाजन गोविंद मादि पुरुषम तन्हं भजामि। भौतिक स्तर पर चाहे इंद्र हो अथवा किसी भी फेके कीड़ा होता है, इंद्र गोप सबको स्वकर्म कर्म के अनुसार उसको एक पात्र मिला है, फल भाजन, फल को कंटेन करने के लिए रखने के लिए एक उसको बर्तन मिला है। अब उससे बड़ा उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, बर्फ जैसा कर्म किया है तो इंद्र को भी अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। इंद्र दो के इनसिग्निफिकेंट छोटा सा कीड़ा होता है जिसकी परम आयु 8 दिन की हुई, और उसको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी भौतिक शक्ति हमारे इस कर्म को, कर्म फल को नष्ट नहीं कर सकती, न तो इसे बढ़ा सकते न घटा सकते, नष्ट कर सकते। यस्तेन्द्र गो मथवेन्द्र महो सकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मात्र महती, केवल और केवल अपने इस कर्म फल को सुख अथवा दुख नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्धातु चहत भाजन, जो भगवान के शरण लेते हैं, भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान एक फल भाजन फल को रखने के लिए पात्र देते हैं, और सब बहुत बड़ा पात्र हो सकता है, और उसके द्वारा अपने भक्ति के द्वारा कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए यदि भौतिक रूप से भी कोई सुखी होना चाहता है तो उसके एसेंशियल है उसे संतोष होना चाहिए। संतुष्ट संतुष्ट संतोष संतोष है तो उसे सुख आ गया। प्रभुपाद जी फिर एक दूसरे टॉपिक की बात कहते हैं, यहाँ पर गीता का मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्स है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्स ऑफ भगवद गीता 6वें अध्याय का 21वां श्लोक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, किंतु भौतिक सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है परम लक्ष्य, और वह सुख सुखम आत्यंतिकम यद्यप बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम ये वेति यत्र चैव आयम शीतस्वलित। हमारा लक्ष्य है आध्यात्मिक सुख, जिसे स्पिरिचुअल ब्लिस कहते हैं, ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस इसे कहा जाता है, तो वह प्राप्त करना मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं। और आत्यंतिकम सुख यद्यप बुद्धि ग्रहण अतीन्द्रियम, और उस सुख की प्राप्ति उन इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो जीव का स्वरूप है, हम लोग का जो स्वरूप है कि जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य राश, हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमको अभी जो भौतिक देह मिला है तो भौतिक देह के साथ भौतिक इंद्रियां मिली हैं, और ये भौतिक इंद्रियां बाह्य और से माया से ढकी हुई है। इन इंद्रियों के पीछे, इन हमारे शरीर के पीछे हमारे आध्यात्मिक स्वरूप है, दिव्य ट्रांसडेंटल हमारा रूप है, और उसके साथ हमारे ट्रांसडेंटल बॉडी इंद्रियां भी है। दिव्य हमारा स्वरूप है, दिव्य जो स्वरूप है, और उसके साथ उस स्वरूप के साथ में नित्य इंद्रियां हैं, ट्रांसडेंटल सेंसेस भी है, और उस आध्यात्मिक सुख हमारा प्राप्त करना लक्ष्य है, और उस आध्यात्मिक सुख को भगवान हम कहते हैं अति इंद्रियों को, इस इंद्रिय अति इंद्रिय परम इंद्रिय ट्रांसडेंटल जो इंद्रियां है उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम। और एक व्यक्ति यदि जब व्यक्ति उस सुख में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह सुख प्राप्त कर लेता है, तो उसके सामने संसार का सुख एकदम तुक्ष हो जाता है। से तो परम फल परम पुरुषार्थ जार आगे तुल्य तुल्यचारी पुरुषार्थ, यदि वह प्राप्त होता है, वह सुख प्राप्त होता है, आध्यात्मिक प्राप्त सुख प्राप्त होता है, जहाँ भौतिक जितने उपलब्धियां हैं, जितने सुख है, वे तीर्ण तुल्य हो जाते हैं, उसके लिए उसके इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसीलिए हमको हर प्रयास करके भगवान की भक्ति में जुड़कर और अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है, हमें एग्जिस्टेंस को शुद्ध करना होता है, और शुद्ध करने के लिए भक्ति योग में लगना होता है, जिसको ऋषभ देव तपस्या कहते हैं। तो हम लोग तप में दिव्य तप में तपो दिव्यम पुत्र का ये सप्त दिव्य तप तपस्या कॉन्फिडेंट ऑस्टेरिटी में हमको इंगेज होना होगा, भक्ति में लगना होगा। और वंस हम भक्ति में लगते हैं, दिव्य तपस्या में लगते हैं, सुदेव यशनाथ सब तो हमारा सब हमारा अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व है, हम लोग जिस शरीर है शुद्ध हो जाता है, हमें दिव्य कॉन्फिडेंटल बॉडी की प्राप्ति होती है। और एक बार वह स्थिति प्राप्त होती है तो ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सौख्य मतलब स्पिरिचुअल ब्लिस, सुख सौख्य सौख स्पिरिचुअल ब्लिस प्राप्त होता है। और वह जो आनंद होता है तो अनंतम, वो कभी अंत नहीं होता है। यहाँ का जो भौतिक सुख है इसका एक दिन प्रारंभ होता है और एक दिन उसका अंत भी हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख जब प्राप्त होता है व्यक्ति को तो वह शुद्ध यशनाथ ब्रह्म सौख और अनंत होता है। ओवर लास्टिंग अनलिमिटेड ट्रांसडेंटल विश्व से कहा गया भगवान इसी बातों का, तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। देशाश्रम प्रभुपाद जी कहते हैं यदि, ये तो आध्यात्मिक सुख, यदि कोई भौतिक रूप से भी सुखी होना चाहता है तो उसके लिए भी संतोष आवश्यक, असंतुष्ट व्यक्ति भौतिक रूप से भी सुखी नहीं हो सकता है। और जानते हैं आप लोग संतोष के कंटेंटमेंट के विपरीत शब्द होता है, उसको क्या कहते हैं, संतोष के विपरीत शब्द क्या है, असंतोषाचार। संस्कृत जानते ही सेवा लेकिन एक वास्तविक्रीड से कहते कंटेनमेंट, संतोष कंटेनमेंट में हमको जो स्थिति प्राप्त हुई है, जो परिवेश प्राप्त होता है, न तो हम उसको छेद करना चाहते हैं और न तो हम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। हमारी इच्छा नहीं है कि हमको जो प्राप्त हुआ है उसमें हम डोंट हो एनी चेंज, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी इंप्रूवमेंट, तो कंटेनमेंट है। और ठीक उसके साथ है जो लोग भागवत में बार बार कहा गया है कि लोभी व्यक्ति, भगवान के बड़े शिष्य शब्द का भक्त है, असंतोष जिसमें है असंतोष उसे सुख सुख नहीं प्राप्त होता है। लेकिन वेरी ब्लंटली अभी बात करें कि लोभी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, आप लोग कथा में जानते हैं अवंती के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा है, अवंती के ब्राह्मण ने कहा है अपने गीत में कि कोई बहुत कितना भी सदाचार संपन्न है तो वो कैसा था, जसो जस सुना शुद्धम, एक ऐसा उसका जस तीनों में फैला हुआ है, शुद्ध जस सुजस फैला हुआ है और उसमें इतने अच्छे अच्छे गुण हैं कि बड़े बड़े गुणान विलोभित हो जाते हैं, वो भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यदि उस व्यक्ति में लोभ हो जाता है, थोड़ा भी इनसिग्निफिकेंट थोड़ा सा भी लोभ उसमें हो जाता है, तो उसके सारे यश उसके सारे गुण वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, कोई व्यक्ति का खूब अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस है, बॉडी खूब सुंदर है, ब्यूटीफुल व्यक्ति है, बट अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस है, सुंदर है, यदि उसके चेहरे पर सूत्रो रूपम सूतम उसके चेहरे पर थोड़ा सा एक व्हाइट लिपोसी का चिन्ह हो जाता है तो उसका संपूर्ण शारीरिक अट्रैक्शन नष्ट हो जाता है। और सूत्र लिपोसी जैसे व्यक्ति की सौंदर्य को कितना भी सबको सुंदर है, चेहरे पर थोड़ा सा कुष्ठ का सफेद दाग हो जाता है तो सौंदर्य नष्ट हो जाता है, तो वैसे ही सभी गुणों से वो संपन्न है। यदि उसमें लोभ आ गया तो उसके सारे गुणों को नष्ट कर देता है। भगवान वामन देव जी यह बात कहे हैं कि यज्ञ शिक्षा लाभ संकुश तेजो विपक्ष वर्धते। किसी ब्राह्मण का तेज स्पिरिचुअल पोटेंसी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल ब्राइटनेस कैसे बढ़ता है संतोष से। और यदि उस व्यक्ति में लोभ आ जाता है नेक्स्ट वर्ष है जो दीक्षा संतोष जो दीक्षा लब्ध पुष्प तेजो विप्रश बढ़ती। एक ब्राह्मण का तेज संतुष्ट रहता है उसकी स्पिरिचुअल पोटेंशियल उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहती है तेज बढ़ता रहता है। लेकिन यदि उसमें लोभ आ जाता है भगवान को लोभ की बात करते हैं असंतुष्ट और लोभ आता है तो लोभ के कारण उसकी स्पिरिचुअल पोटेंसी है तो उसका ब्रह्म तेज है वैसे ही घट जाता है जैसे अग्नि प्रज्वलित है उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल आप करते हैं तो फेर होता है लव होता है शांत होने कम होने लगता है। तो संतोष से ब्राह्मण का ब्रह्म तेज स्पिरिचुअल पोटेंसी खूब बढ़ती है इंटेलिजेंस खूब बढ़ता है सुंदर लगने लगता है। लेकिन कहीं लोभ उसमें आ गया तो क्या होगा वो जो लव हो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे लव पर अग्नि प्रज्वलित है उसमें पानी आप छिड़कते हैं तो उसके तेज को आग की तेज को कम कर देता है बुझा भी देता है। भगवान यहाँ कहते हैं इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। अब वह हमको हमारे अभी नैतिकता है आप बड़े हैं हम बहुत बड़े बड़े दान हैं लेकिन मुझे जितनी आवश्यकता है मैं ब्राह्मण हूँ ब्रह्मचारी हूँ मुझे उतना ही मांगना चाहिए जितना से हमारी बेयर नेसेसिटी है उसी के लिए मैंने बड़ा आदमी चले तो बहुत मांग लू। इसलिए मैं अपने तेज को मैं अपने ब्रह्म तेज को नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। बड़े व्यक्ति के पास आ जाए तो बड़ा चीज हमको ले लेना है क्षमा कीजिए मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता हूँ देना हो दीजिए नहीं तो हमें मतलब नहीं है। तो यह तो बात है लोभ के लिए भौतिक स्तर पर लोभ नहीं होना चाहिए। परंतु आप लोग जानते होंगे राम राय रामानंद राय जी ने यह बात कही है अध्यात्मिक प्रगति करने के लिए यदि सखी को प्रगति करना चाहिए चाहता है तो उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सखी जब एक भौतिक बात है आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं भक्ति करना चाहते हैं तो उसमें संतोष की बात को बहुत खराब कहा गया है। तस्य हेतु प्रतीत पूर्वी यद भ्रम काम करती दुख वदन सुखम काले न सर्वर। नारद जी कहते हैं अपने शिष्य से व्यास जी की व्यास तस्य हेतु प्रतीत प्रयत्न करना चाहिए भगवती की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति यत्न में खूब प्रयास करना चाहिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि संतुष्ट हो जाएंगे तो वो नहीं होंगे भक्ति नहीं प्राप्त होगी भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए आपके हृदय में प्राप्त करने के लिए इंटेंस वृद्ध की जरूरत होती है। आध्यात्मिक प्रगति करना है तो संपूर्ण ठीक है अतः मंगलारती में आए जाते हैं सब जबरू हो रहा है चलती का नाम महाराज गोपाल कृष्ण महाराज पहले कहते थे चलती का नाम गाय है ठीक ही हो रहा है वो उसके लिए लोभ अति आवश्यक है। कृष्णा भक्ति रस भाविता मुक्ति क्रियता यदि कुतो की लब्ध देखें तत्र लौल्यम प्रति मूल्य निकलम कूटी जन स्मृति भिन्न लभते। भौतिक सुख के विषय में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपने कर्म के अनुसार हमको कहीं जाएंगे प्राप्त होगा लेकिन भक्ति कोटि जन्म स्वीकृति विघ्न लगते करोड़ों जन्मों की स्वीकृति से पुण्य कर्म से भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भक्ति की प्राप्ति के लिए एक आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा और वह मूल्य है कृष्ण भक्ति रस भाविता मुक्ति क्रियता।
साहित्यिक ढंग से कहा गया है। राय रामानंद कहते हैं कि यदि किसी को कृष्ण भक्ति रस भाविता मति चाहिए तो उसे खरीद लेना चाहिए, तो यदि कहीं बाजार में कहीं उपलब्ध है और बेचने वाला कोई मूल्य मांगता है, संकोच मत कीजिए, ले लीजिए, बार्गेनिंग भी मत कीजिए, जो मूल्य कहता है उसे देकर खरीदिए। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता खरीद लेना चाहिए। यदि यदि कहीं प्राप्त हो रही है तो वही राय रामानंद जी कहते हैं, लेकिन उसको खरीदना चाहते हैं कृष्ण रस भाविता मति, शुद्ध कृष्ण प्रेम खरीदना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। वो मूल्य क्या है? लॉलियम इंटेंस ग्रीड टू गेट अतिशय लोभ कि हमको मिलना ही चाहिए, सब आग्रह छोड़कर एकांतिक रूप से नहीं हमको मिलना ही चाहिए, उसके लिए हम मचल जाते हैं, तब वह मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान जो यह कह रहे हैं, रामदेव कह रहे हैं कि भौतिक स्तर पर यदि आप सुखी होना चाहते हैं, भौतिक रूप से भी सुखी होना चाहते हैं, तो आपको संतोष होना चाहिए। दीक्षा जो कुछ भगवान ने दे दिया है भाई, वील ऑफ प्रोविडेंस, हमारी इच्छा नहीं है कि हम कुछ चेंज करें, अच्छा इंप्रूव करें, उसे भी संतुष्ट होना चाहिए भौतिक भोगों में। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो लोग उसमें वन ऑफ द मोस्ट एसेट आपके साथ है, वह प्राप्त होगा तो आपको कृष्ण रस भाविता मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और एक बार वह प्राप्त हो जाए से तो परम फल परम पुरुषार्थ यार आगे तिल्य तुल्यचारी पुरुषार्थ। प्रभुपाद दिल्ली में कहते हैं कि यदि भौतिक सुख भी लक्ष्य है तो भी, लेकिन वास्तव में भौतिक वह परम लक्ष्य नहीं है, परम पुरुषार्थ है, परम लक्ष्य ये तो परम फल, परम फल है, सुप्रीम डिजायरेबल ऑब्जेक्ट है कृष्ण प्रेम, और उसके लिए एक परम फल परम पुरुषार्थ जार आगे तुल्यचारी पुरुषार्थ, यदि वह प्राप्त हो जाता है तो यह यहाँ का भौतिक सुख है इंसिग्निफिकेंट, उस व्यक्ति के लिए पेड़ के समान, घास के समान वह इंसिग्निफिकेंट कुछ हो जाता है, तो हमें उसे प्राप्त करने का प्राप्त करना चाहिए। हवे भरे हम ब्राह्मण देव संतोष कंटेंटमेंट की प्रशंसा करते हैं। हरे कृष्ण, ठीक है, कम से कम इस श्लोक में ब्राह्मण देव ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम सुख नहीं कर रहे। थैंक यू महाराज,
अच्छा क्लास आपने दिया, ठीक मुझे क्या बार आप सभी बता रहे थे कि बच्चा का अहो ब्राह्मण दयावस्ते सब प्रसन्न करा तम बालो बालिश मती, मतलब ब्राह्मण लोग कहते हैं क्या वैसा क्यों कहते हैं कि मेरा जो बुद्धि है बच्चे के समान है। बलिमाय करते हैं क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं कि उसमें कितनी भलाई है कितनी भलाई नहीं है, स्वार्थम प्रति अवधो यथा, बच्चों को बुरी हमें खेलने में अच्छा लगता है, उसको मालूम नहीं कि अच्छा है उसके लिए नहीं अच्छा है। कहते हैं कि बच्चों का परिचय दिए हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, स्वार्थम प्रति अवधो यथा, अपने स्वार्थ के विषय में किसी भलाई है उसको नहीं जानते हैं बालक पढ़ाए।
बोलने के लिए समय है,
हरे कृष्ण महाराज।
आज आपने जैसे बताया कि जो प्रारब्ध में है वो किसी भी मतलब तरह से मिलेगा, जैसे अगर प्रारब्ध में नहीं है कितना भी प्रयास करे नहीं मिलेगा, तो ये समझ में आता है, मतलब देखता भी है कई बार। लेकिन जैसे अगर प्रारब्ध में है तो अगर मिनिमम फंड नहीं डालेंगे तो वो मतलब कैसे प्राप्त होगा, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना उसके लिए। जैसे अगर किसी का
मेंटली संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसे फिजिकल जो प्रयास है तो भगवान भगवद्गीता में कहे हैं कि नियतम कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो हकर्म, शरीर यात्रा न चक्ति प्रसिद्ध ही कर्म, काम नहीं करोगे तो शरीर यात्रा निर्वाह नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो कर्मों का स्वरूप तो त्याग की बात भगवान नहीं कहते हैं, संतुष्ट रहना चाहिए। और प्रहलाद महाराज कहते हैं फिर और भी वो उपदेश देते समय दत्तात्रेय भगवान भी यही बात कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में ललाट में जो पूर्व कर्म है वो मिलेगा ही। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योग विधिना सर्वत्र लभ्यते दैव यथा दुखम अयत्नतः, बिना प्रयास किए जैसे हमको दुख मिलता है वैसे ही है मेरे मित्रों। प्रहलाद महाराज कहते हैं क्योंकि इंद्रिय सुख मतलब भौतिक सुख कहीं भी जाएंगे, मन के समझ मत समझे कि बॉम्बे भी ज्यादा मन है, ये आपके ललाट में नहीं है, तो चाहे बॉम्बे रहे चाहे चांदनी चौक में रहे चाहे कोलाबा बाजार पैसा चाहे सुख यहाँ है, यहाँ है तो मिलेगा, नहीं है तो अब छकर लगा ये कहना। लेकिन फिर भी भगवान भगवद्गीता में जब कहते हैं नियतम कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो हकर्म, नहीं शरीर यात्रा पृच्छति प्रसिद्धित कर्म, स्वरूपतः कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए भौतिक निर्वाह के लिए, लेकिन मन से एकदम संतुष्ट रहना चाहिए। अजगर करे न चार करी पक्षी करे न काम, दास मल्लू का कह रहे सबके दाता हम, क्या अजगर चाकरी क्या कर चाकरी करते हैं ना अजगर मोटा सांप होते हैं तो क्या करते हैं कहीं ऑफिस में नहीं जाते हैं, अजगर करे न चाकरी पक्षी में कौन सा है उड़ते रहते घूमते हैं, लेकिन शाम होते होते पेट भर ही जाता है। दास मनु का कहना सबके दाता हम बड़े वैदिक ग्रंथ में बार बार हम बात कम से कम श्रीमद भागवत में नारद जी कहते तस्व हेतु प्रयत्त को विदु न लभ्यते यद भूता में तल लभ्यते, लेकिन तब भौतिक सुख प्राप्त हो गया तल लभ्यते दुख जैसे दुख प्राप्त होता है वैसे भौतिक सुख भी प्राप्त करे। और प्रहलाद महाराज कहते इन प्रेरित तब प्रयासो न कर्तव्य, उसके लिए प्रयास नहीं ही करना चाहिए, यतः आयु व्यय केवल उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी है, अपने आप को प्राप्त उसे लिए प्राप्त करना है, नहीं प्राप्त होने वाला है तो नहीं होगा, इसे तब प्रयासो न कर्तव्य, इसीलिए उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान भगवद्गीता में थोड़ा सा सख्त देखते हैं नियतम कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो हकर्म, शरीर यात्रा पिचनति प्रसिद्धित कर्म, काम नहीं करोगे और उसे भगवान कहते हैं कि तो शरीर का निर्वाह भी सम्यक रूप से नहीं हो, तो स्वरूपतः कर्मों के त्याग की अपेक्षा कर्म फल का त्याग करके कर्म करना अच्छा भगवान कहते हैं। नियतम कुरु कर्मं त्वं, तुम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करो, क्योंकि कर्म ज्यायो हकर्म, कर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करना नहीं करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, और यदि नहीं करोगे प्रिस्क्राइब ड्यूटी का पालन नहीं करो तो शरीर यात्रा भगवान शब्द शरीर यात्रा की क्षति न प्रसिद्धि, सम्यक रूप से शरीर का मेंटेनेंस भी नहीं होगा, शरीर यात्रा की नक्षति पर अशुद्धित कर्म नहीं काम करने से शरीर का सम्यक निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए स्वरूपतः कर्म फल कर्म त्याग की अपेक्षा श्रेष्ठ है कर्म के फल का त्याग करके और अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी में हमेशा लगे रहना।
बॉम्बे का उपदेश की लोग नहीं होना चाहिए लोग का जैसे आप कहें, लेकिन प्रवचन तो बॉम्बे किए लोग ने, लेकिन लेने के लिए तो ठीक विपरीत सब कुछ ले लिया और उनको और कहे कि तुम अपना मांग मेरी मांग को पूरा करो। कहते प्रवचन ऐसे ही हो गया जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।
शुरू में भगवान लेने के लिए आए थे, सब कुछ लेने के लिए आए थे, एकदम पहले से भीतर में था संकल्प ले ली थी सब कुछ ले लेना था, यही टेंशन था। लेकिन दान जो लेता है उसको कैसे ठीक करना चाहिए देखने को हम बता रहे पहले इतनी भारी प्रशंसा किए हैं देने जो दाता के पास खूब प्रशंसा करना चाहिए। बेगर की क्या फिलॉसफी होना चाहिए, क्या मेंटालिटी होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए भगवान ने बताया है। कह रहे हैं कि नहीं लेना एकदम एक सब कुछ ले लिया, इतनी भारी बेइज्जती सहकर बदनामी सहकर। देखिए बामन लोग कहते हैं ना कि बामन कहते हैं बामन छोटा अभी कितने भारी बदनामी भगवान की होती है, त्रिविक्रम है लेकिन तो बामन कहते हैं छोटा बामन कहते छोटा है तो डालें बेइज्जती सहकर भी दान लेने का जिसे दान लेना है किसी से उसकी क्या कितना टैक्टफुली बातें करना चाहिए। एक्सपोज नहीं होना चाहिए कि अरे ग्रीडी है मांगेंगे तो क्या गए तो मांग रहा है, ऐसा बात बनाइए कि वो अपने से सब कुछ दे दे। तो लेकिन फिर भी भगवान जो कहते हैं भौतिक स्तर पर संतुष्ट किया तो संतुष्ट होना चाहिए। तो भगवान की लीला है उसके बाद मांगने वाले का उनको ही भगवान को पीछे दिन दान मांगने आएंगे उनको कुछ पाठ चाहिए ना कैसे कैसे बोलना चाहिए क्या करना चाहिए। लीला करके सब कुछ ऐसे लोग हैं ब्राह्मण लोग जाएंगे दान मांगेंगे तो कैसे उनको मांगना चाहिए। तो भगवान टेंशन था पहले से प्री प्लान था कि सब कुछ ले लेना है। शुरू भगवान को ना मैं ऐसे मैं देखने के लिए आया था जो दिन मैं मांगने क्यों आया था। दूसरा बात है कि इसमें हाइपोक्रेसी बिल्कुल नहीं है समझ में गड़बड़ी है। बावन भाव जब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पहला नंबर अपने लिए मांगने आए नहीं थे देवा नाम का ऐसा रखा वो देवताओं के लिए मांग रहे थे अपने लिए नहीं मांग रहे थे। ये जो बात कह रहे हैं भगवान यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के लिए हम लोगों के लिए कह रहे हैं जो हम लोगों को जो मिला संतोष करना चाहिए भगवान के लिए नहीं। गोपाल कहते हैं आगे पकड़ लपेट लिया पूरा पकड़ लूंगा भगवान के लिए संतोष नहीं करना है और गुरु के अलावा कभी कमे हो रहे हैं भगवान के लिए अपने लिए। यहाँ पर भगवान राम लोग अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं किसके लिए देवा नाम कार्य साधक देवताओं के कार्य को सफल कर देवा नाम कार्य साधक देवताओं का काम करना है और देवताओं का काम था राज को लेना ही है स्वर को अपने हाथ में।
कि मैं बहुत संतोषी हूँ तीन पनी चाहिए और वो भी सिंपल दिखाए मेजरमेंट कुछ और बाद में बहुत बड़ा मेजरमेंट जैसे कोई लेना हो बटखरा दिखाए छोटा लेना हो तो बड़ा बटखरा से तोड़ने लगे तो पहले ही अगर कह देते कि मुझे संपूर्ण अपना साम्राज्य दे तो बड़ी महाराज तो देने के ऊपर ही है तो इतना ठीक क्यों भगवान के लिए ठीक किसका जरूरत है। देखो आगे बात आई हुई है बलि महाराज को प्रतिज्ञा करा लेना था नहीं तो प्रतिज्ञा नहीं करते भगवान मांग देते तो विष्ट था ना शुक्राचार्य मना कर दिए ना तो भगवान को तो प्रतिज्ञा को ला देना था एकदम ला दे तब भगवान
या तुमको ला देना था कि हम बिना वचन दे दिए संकल्प बोलने जा रहे थे, तो इसीलिए मानने वाले को मैं तो बाधा हो सकती थी ना। आप देखे कितनी भारी समस्या थी कि गुरु जी ने कह दिया और एक शिष्य के लिए साक्षात हरि तीन समस्त शास्त्र कह रहे कि नहीं देना है, तो भगवान यदि ठीक करके प्रतिज्ञा नहीं लिए होते थे तो भगवान इसे चांस नहीं लेना चाहते हैं कि ऐसा लिनियंट रहे कि कोई कारण पड़ जाए और व्यक्ति दोनों भाग जाए, प्रत्येक तरह से उसको बांधना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा बुक रिकॉर्ड लाइन छोड़ा दे सुबह की निकलने का तो एकदम चारों जगह घेर लेना, कितना भारी गिरावट आ गया कि शुक्राचार्य कह दे साक्षात कहिए कि नहीं देना है। और आप लोग जानते हो शिष्य थे साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र गुरु की आज्ञा या शोक प्रसाद भगवत प्रसाद। और इतना ही नहीं, आप लोग जानते हैं बलि महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, इस शरीर को भी बलि महाराज ने ही शुक्राचार्य ने ही दिया था, संजीवनी विद्या इनकी मृत्यु हो गई थी बलि महाराज के द्वारा, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जान गए थे, उस विद्या के द्वारा अपने जीत लिए थे, कितना भारी उपकार हुआ। तो शरीर भी शुक्राचार्य दिए थे और आध्यात्मिक ज्ञान को दिए हैं सिखा, और वो कह रहे कि नहीं देना है। यदि ब्राह्मण देव ठीक करके जैसे करके प्रतिज्ञा नहीं लिए होते तो भारी विश्व था, चांस था कि वह बलि महाराज कर सकते थे। ये तो सब ने तो कुछ जो तो करना नहीं पड़े
एक बात ये भी है कि भगवान चाहते हुए बलि को डिफीट नहीं कर सकते थे, भगवान स्वयं कहे थे कि आज बलि पर ब्राह्मण का कृपा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यदि कोई मेरे पास से श्रापित किया जाए ब्राह्मण को असंतुष्ट कर दे तभी यह संभव है। तो भगवान बलि महाराज को वहां तक लेकर के आए जहां तक वो वचन दे दे और शुक्राचार्य को गुड बाय बोल दे, तो शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि जब मैं बहुत चांस समझता है तुम्हें मालूम नहीं क्या होने वाला है, तू तो नरक में जाएगा, दो पैर में सब नाप लेगा, तीसरा पैर कहाँ रखोगे कहाँ दोगे। तो भगवान ने वही कहा जो गुरु जी ने कहा था, जैसे आप प्रसाद भगवत प्रसाद दो पैर में सब नाप लिए तीसरा कहाँ रखोगे। तो बलि में तो भगवान जो भक्त थे सर्वांग थे, तो भगवान ने बुद्धि दिया कि बात सिरे दे दो, तो वेरी गुड पॉइंट।
बाद में आप पूछ लेते हैं समय प्रसारण कर
हरे कृष्ण महाराज। अच्छा एक साधक और एक भक्त जो जो भक्ति के लिए नहीं करता तो कर्म के कैसे चलते हैं उसके अनुसार, एक साधक भक्त है और एक भक्ति नहीं करता तो उसको प्रारब्ध कैसे चलता है। जैसे एक भक्त को बहुत बड़ा धन मिलने वाला था उसको प्रारब्ध में तो भक्ति करता है तो क्या नष्ट हो जाता है ऐसा।
होता है ना फिर से आप क्लियर कीजिए प्रश्न को।
जैसे जो भक्ति प्रयास नहीं कर रहा है भक्ति के लिए,
भक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा
है भक्त जो है भक्त है
भक्त भक्त नहीं है
भक्त नहीं है और एक साधक जो
भक्त है
साधक है वो उसका जो प्रारब्ध में एक बड़ा आदमी बनना चाहिए तो भक्ति करने से क्या उसका पुण्य नष्ट हो जाता है।
जैसे जब भगवान के धाम में प्रवेश करने की बात होती है तो उसमें पाप और पुण्य दोनों बाधक होते हैं, तो उसे कर्म जो अच्छे शुभ कर्म खींचना चाहते हैं स्वर्ग के तरफ भोगों के तरफ तो उसको भी नष्ट हो जाता है। कर्माणि निर्धत्व तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों भी भौतिक नष्ट हो जाते हैं। अच्छा जब करने से कुछ ऐसे शुभ कर्म भी बाधक होते हैं भक्ति में तो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आप निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करें भक्त करेगा तो कुछ ऐसे अच्छे जैसे मान ले बंधन है एक व्यक्ति लोहे के जंजीर में बंधा हुआ एक सोने के जंजीर में बंधा हुआ है तो और मुक्त होना चाहता है तो लोहा वाला मान लीजिए अभक्त का जो पाप का बंधा है और एक सोने के जंजीर बंधा है तो वो भी पुण्य का अर्थ होता है। तो जाने के लिए तो दोनों कटना चाहिए ना, पाप और पुण्य। भगवान की प्राप्ति में होने के लिए पुण्य कुछ सहायक होते हैं बिगनिंग में, लेकिन जरूरत नहीं होती है। इसे जब हाईएस्ट स्टेट प्राप्त होता है तो वहां पर शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप चिंता नहीं करना चाहिए, हाँ हम लोगों के पास उतना शुभ कर्म नहीं है कि पुण्य नष्ट होने वाला है। भगवान का कम जब करेंगे नहीं तो पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, ये चिंता करने की बात नहीं है। वो बहुत कम है और ज्यादा दूसरा ही है। ठीक है, तो
कृष्ण भावना भावित होने के लिए मतलब लोभ की जरूरत है, लेकिन लोभ कैसे प्राप्त होगा?
रामानंद राय जी चैतन्य महाप्रभु से बातचीत करते कहते हैं एकदम हाई सुप्रीम कृष्ण भाव मति की प्राप्ति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता। कृष्ण रस भाविता मति को खरीद लेना चाहिए, यदि कुछ की लभ्यते, यदि कहीं यह बिक रहा है तो प्राप्त होता है। तो रामानंद जी कहते हैं कि बार्गेनिंग भी ज्यादा दाम मांगता है तभी ले लेना चाहिए। और उसको वो कहते हैं रामानंद राय, उसके लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। वह मूल्य आपके पास होगा, आपके पॉकेट में होगा तो खरीद सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं। आपको वह क्या मूल्य है? लौल्यम, संस्कृत शब्द उन्होंने लौल्यम, वहां पर अनुवाद के इंटेंस ग्रीड। लोभ से काम चल सकता था ग्रीड, लेकिन अब इंटेंस ग्रीड तो वह ग्रीड प्राप्त कर लोभ प्राप्त होता है। और वह लोभ के लिए वही पर आजू बाजू में बात करी है, जब हम कैसे जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जाता है उसके एसोसिएशन हम लोग जाते हैं और उसके सुख को आध्यात्मिक विश्व को हम लोग देखते हैं तो हमारे भी वैसा सुख प्राप्त करने की लोभ उत्पन्न होता है। जैसे इस बड़े व्यक्ति के घर में आप लोग जाते हैं, वहां पर देखते हैं खूब बढ़िया कार है, तो कभी कभी इच्छा होती है कि हमारे पास भी कार हो, होता है। तो वैसे ही जो कृष्ण भावना भारत व्यक्ति हो गया है उसके एसोसिएशन में जाने पर लगता है कि वो कितना आनंद में है, भक्ति के सुख में तो आनंद से है, तो उसको हमको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो वह इच्छा लोभ प्राप्त होता है भगवान के भक्तों के एसोसिएशन से। भक्त का तुलयाम लवे ना तो ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मृत्यानाम कृताशिष। अथवा चैतन्य चैतन्य खूब बढ़िया से इस बात को कही गई कि साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु के एसोसिएशन से हमको भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है और वह हो जाता है तब तो हम लोग साधु के एसोसिएशन में श्रवण कीर्तन करते हैं और प्राप्त होता है। लोभ को प्राप्त करने के लिए भक्त का एसोसिएशन। तो आजकल तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, आजकल इतने कथाकार लोग हैं, अब उनका सुनने के बाद नाटक करना शुरू करते हैं, नाचना गाना भगवाना सब कुछ करते हैं, तो लोग सुनने वाले रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज है, अब इनका अनुसरण करना चाहिए, फिर क्या होगा? एक नीति के श्लोक में कहा गया है ऐसे, चंदनम बने बने साधव नहीं सर्वत्र, कैसे एक अशोक है तो हमारा एक मतलब नहीं है कि देश से अपूर्ण साधु का है तो उसे उसके पास भीड़ लगाइए। यह बात बड़े मैंने ब्लंटली कहिए, कहते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं, अवैश्रवात्म खुद गिरणम पूर्तम हरि कथा नृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पो शिष्ट यथा पयः। अवैष्णवात्म खुद गिरणम, जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भक्ति के साधन में नहीं लगता है, अवैष्णव उसके मुंह से उद्गिरणम निकले हुई, अवैष्णवात्म खुद उद्गिरणम उत्तम हरि कथा, यदि वो हरि कथा है, पूत्र पवित्र है कि किसी प्रकार का दोष नहीं, लेकिन जब वो किसी अभक्त के मुंह से निकलता है तो उसको सनातन गोस्वामी कहते हैं श्रवणम नैव कर्तव्य, उसे नहीं सुनना चाहिए। अरे बच्चा हरि कथा बोल रहा है, पवित्र हरि कथा बोल रहा है, व्यशासन से बढ़ क्यों नहीं सुनना चाहिए कि वह वैष्णव नहीं है, वह भगवान का भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करता है। ऐसे सर्वम शिष्य यथापय, इस समय सर्वमान आयुर्वेद का सिद्धांत है कि गाय का दूध स्पेशली जरूर धारोषण दूध है, आप पिएंगे तो आप एकदम सब कुछ ठीक कर देगा, स्वस्थ कर देगा, लेकिन उस दूध को खूब बढ़िया से कटोरी में चांदी की कटोरी में रखे हुए खूब बढ़िया दूध है, आप थोड़ा इधर गए हैं और एक सांप आकर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा पी लिया है, उस दूध को आप क्या करेंगे, आयुर्वेद का दूध चर्क को कोट करेंगे, सुसुम को कोट करेंगे, दूध कितना उपयोगी है, हम कहो आज कहते हैं साफ कहते हैं कि ब्रेन टिश्यू के लिए दूध कितना बढ़िया है, मैं कहूंगा इंपरेटिव है, आदेश है, श्रवणम नैव कर्तव्य, श्रवण नहीं करना चाहिए, अब आप नहीं कहिए श्रवण नहीं भी करना चाहिए, सबको शिष्य यथापय, जैसे सांप ने दूध को पी लिया है थोड़ा सा आशा तो कुछ ही कर दिया है तो वह दूध हम चांस मत लीजिए, रिस्क मत लीजिए, सर्वण नहीं करते। अधिकांश कथाकार एक शब्द का प्रयोग किया, हम उसको आज पहले नहीं जानते, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, प्रोफेशनल रिसाइटर मतलब जैसे कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई मेडिकल प्रैक्टिस करता है, जो कि आपकी आयु अर्न करने के लिए, तो एक जीविका के रूप में प्रोफेशन के रूप में यदि उसने कथा को अपनाया है, उसे अर्न करना है, उसको विभव की आवश्यकता है, आप फैक्ट्री चलाते हैं, चाकरी करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियरिंग से करते हो, आखिर बनाकर अर्न करते हैं, कि मैं भागवतम को एक बढ़िया एकदम शुरू से बहुत बार झंझट भी नहीं है, कुछ पुस्तकें लिए, कुछ सुन ले और बोल लेंगे, तो इसे प्रोफेशनल रिसाइटर के द्वारा यदि कोई भी कथा कही जाती है तो ब्लंटली सब कहते हैं, मतलब एकदम क्या कहते हैं, खराब शब्द में, उदो शब्द में श्रवण कर्तव्य, अवैश्रवात पंचमी विभक्ति में है, अवैश्रवात मुखात उद्गिरणम, अवैष्णव के मुंह से निकली हुई कथा पवित्र कथा हरि कथा है तो भी श्रवणम नैव कर्तव्य, श्रवण नहीं भी करना चाहिए, सर्व को उच्छिष्ट, सर्व का जो रेमिनेंट है कंटेमिनेटेड कर दिया है, जैसे सर्प के द्वारा पिया हुआ दूध जो बचा हुआ उसे नहीं पिया जाता है, नहीं पीना चाहिए, वैसे ही रूपा जी शब्द प्रोफेशनल रिसाइटर्स के मुंह से सुना हुआ उन्होंने सुनना चाहिए, उन्होंने तो रिस्क है, आप क्या मत समझिए कि जो सांप ने दूध पी लिया है तो हम पिएंगे तो ऐसे मन फायदा न करेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, कुछ हो भी सकता है, तो सारी भक्ति नष्ट भी हो सकती है। जीव और कल्याण लागी सूत्र को लो व्यास मायावादी भाष्य शून्य है सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु की जीव और कल्याण लागी सूत्र को लो व्यास वैदिक ग्रंथों का इसेंस है ब्रह्म सूत्र। जीवों के कल्याण के लिए वेद व्यास ने कहा है चारी वेद दधि भागवत नवनी मथु ले न सुख खाई ले न परीक्षित। भागवतम के चारी वेद दधि भागवत नवनी मथु ले न सुख खाई ले न परीक्षित वो एकदम सेंस है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुने है सर्वनाश। सर्वनाश बड़ा कठिन शब्द है तो वैसे ही सर्व की बात कही गई है। यमो समझे कि हम जानते हैं अलग अलग कर देंगे गलत बोलते हैं तो उसको अलग कर देंगे उसमें से क्या है केवल छांट लेंगे अच्छा अच्छा चीजें हंस होता है ना तो पानी को अलग कर देता है और दूध को पी लेता है मिश्रण को। कोई कथा का कितना भी मायावादी कुछ बोलेगा बोलेगा उसमें से हम जो इसेंस को निकाल लेंगे। चेतन महाप्रभु जो रव कल्याण लागी सूत्र को व्यास मायावादी भाष्य सुनने है सर्वनाश। उसी संदर्भ में अभी कहा गया चारी वेद दधी चारों वेद है और दही है और भागवतम क्या है नवनीत मथु ले न सुख खाई ले न परीक्षित। तो उस विषय में थोड़ा सावधानी रहने की आवश्यकता उतना उत्साह इतना ही होना चाहिए।
बाह्य जगत लोगों को बोलते हमको भक्ति मिल गया लेकिन हम भक्त लोगों को बोलते हमको भक्ति नहीं मिल रहा है। प्रयास करें बार बार प्रयास करें एक साल नहीं दो साल नहीं पांच साल नहीं पच्चीस साल तीस साल रहे कि भक्ति नहीं मिले तो डायरेक्ट क्यों भक्ति नहीं मिल रहा।
अरे वो अभी मेरा भी वही प्रश्न अगर मैं नीचे बैठा होता तो यही प्रश्न पूछता जो आप पूछ रहे ठीक है प्रश्न है और बहुत दिन तक पूछा भी जाता रहेगा। ठीक है आप बात करते हैं जय श्री कृपा आपकी।